ओम शांति।
बहुत बहुत समय पहले चीन के एक बहुत बड़े आश्रम में एक नवयुवक आता है और वो कहता है कि मुझे संन्यास लेना है। और उस आश्रम में लगभग 500 सन्यासी रहते हैं। तो गुरु कहते हैं, क्या तुम्हें सन्यास का अनुभव करना है या दिखावा करना है? वो कहता है अनुभव। तो गुरु कहता है कि जाओ फिर आज से जो रसोई है वहां पर जाकर चावल कूटो और यही तुम्हारा काम है, सुबह से लेकर रात तक यही तुम्हारी शिक्षा है और यही तुम्हारा संन्यास है। जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना बुलाऊं, तब तक वापस नहीं आना। और वो युवक आज्ञा को शिरोधार्य करके चला जाता है और चावल कूटता है। बाकी सारे ब्रह्मचारी अध्यात्म के प्रवचन सुनते हैं, सुबह शाम अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का, किताबों का चर्चा करते हैं, परंतु उसे केवल एक ही काम दिया है, एक ही सेवा दी गई है और एक ही उसका समर्पण है। उसको कहा गया था तुम जाकर केवल चावल कूटो। उसको भी मन में इच्छा होती है कि सुबह सुबह क्लास होती है उसमें जाऊं, आध्यात्मिक प्रवचन होते उसमें जाऊं। उसकी भी इच्छा होती है कुछ शास्त्रों का अध्ययन करूं, कुछ किताबें पढूं, कुछ वाणियों का अध्ययन करूं। उसको भी लगता है चर्चा करूं, पर उसे एक ही काम दिया गया है, चावल को कूटने का काम। मन में संकल्पों का उहापोह, परंतु वो कूटते रहता है क्योंकि गुरु ने उसको पूछा था सन्यास का अनुभव करना है या दिखावा करना है। अगर अनुभव करना है तो गुप्त हो जाओ, निकल के बाहर मत आना, जो कहा है बस उतना ही करना। और वो चावल कूटते रहता है, सुबह उठता है चावल कूटना चालू करता है, एक ही कमरे में जिसमें प्रकाश भी कम है और वहीं सोना है उसको और वहीं उसकी सेवा है और चावल कूटता है। धीरे धीरे संकल्प भी शांत होने लगते हैं, मन भी स्थिर होने लगता है क्योंकि बुद्धि कहीं भी नहीं जा रही है, एक ही काम है सुबह से रात तक। पहले संघर्ष था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बाकियों को इतनी अच्छी सेवा है, बाकियों को इतना अच्छा योग कर रहे हैं, ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं और मैं ये 12 वर्ष बीत जाते हैं और वो केवल चावल ही कूटते रहता है। उसके साथ जो आए थे वो बड़े बड़े स्पीकर बन गए, अध्यात्म पे प्रवचन करने लगे। उसके साथ आए हुए बड़े ज्ञानी बन गए, शास्त्रों के बड़े विद्वान पंडित बन गए। और उसने तो पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा था, उसे तो पढ़ना भी नहीं आता ना लिखना आता, वो तो एक ही काम कर रहा है चावल कूटने, क्योंकि 500 सन्यासी है वहां और दूसरी उसको कोई सेवा ही नहीं, एक ही सेवा। 12 वर्ष बाद गुरु एक बार कहते हैं मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है। और जो उत्तराधिकारी बनना चाहे मेरे दरवाजे के बाहर कुछ चार पंक्तियां रात में लिख कर जाए, जिसमें सत्य की अनुभूति हो, जहां सत्य झलकता हो। तो सभी विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी जो बड़ा ज्ञानी होता है, वो जाकर रात में चार पंक्तियां लिख कर आता है, और जो जो वो पंक्तियां पढ़ता है आश्चर्यचकित हो जाता है। इससे अधिक सत्य और क्या हो सकता है। वो लिखता है, मन दर्पण है, विचार धूल है, धूल को हटा दो तो सत्य उपलब्ध होगा। सबको लगता है आहा, ऐसी अद्भुत बात कि मन दर्पण, विचार, संकल्प, भावनाएं धूल है, उसको हटा दो तो सत्य की प्रतीति होगी। गुरु सुबह उठकर देखते हैं और कहते हैं, किस नासमझ ने लिख के रखा है, वो कौन मूर्ख है जो इस आश्रम में रहता है और उसने ये लिखा। वो डर जाता है और रातों रात भाग जाता है जिसने लिखा था, सबके सामने कहीं बेइज्जती ना हो जाए। पर बाकी लोग सोचते हैं, इसमें गलत क्या है, सत्य ही तो लिखा है। गुरु थोड़ा ज्यादा ही कठोर हो रहे हैं और वो बात करते करते उस व्यक्ति के पास जाता है, वो शिष्य जो धान चावल कूट रहा है, और उसको बताते ऐसी ऐसी बात हुई है, और उससे कहते हैं कि ऐसे ऐसे गुरु ने कहा है, तुम लिखना चाहोगे। वो कहता है, मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मैं क्या लिखूं। और वो कहता है, क्या लिखा था उसने। तो वो कहता है कि मन दर्पण, विचार धूल, धूल को साफ करो सत्य दिखेगा। वो कहता है, बड़ा ही गलत लिखा, क्योंकि ये बात तो सीधा शास्त्र से चुराई हुई है, इसमें अनुभव कहां है, उसका अपना अनुभव कुछ भी नहीं है उसमें। वो जो कुछ कह रहा है इधर उधर से उधार लिया हुआ है, दूसरे व्यक्तियों के विचार है, वो किसी और का अनुभव है, वो अनुभव है, खुद का अपना कोई अनुभव नहीं। तो कहते है, तुम क्या कहते हो फिर। वो कहते है, मैं क्या कहूं, मुझे तो लिखना ही नहीं आता है। वो कहते है, तुम कह दो, हम लिख के आ जाएंगे। तो वो लिखता है या कहता है, ना कोई दर्पण है, ना कोई धूल, ना दर्पण ना धूल, कुछ है ही नहीं। गुरु ये वाक्य पढ़ते और सीधा उसके पास आते और कहते हैं कि मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं, क्योंकि तूने जो कहा है और तूने जो बात पकड़ी है वो सबसे सूक्ष्म है, परंतु तुम अब यहां मत रहना, तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि नहीं तो ईर्ष्यावश ये बाकी सब तुम्हें मार देंगे। और उसको रवाना कर देते हैं। उसने कुछ भी नहीं किया था, जब से आया तब से केवल अपनी सेवा में लगा था, जो उसके गुरु ने कहा ये करो बस वही किया, और कुछ भी नहीं किया। और वो करते करते ही परम सत्य की उसको अनुभूति हो गई। ऐसी आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन, ओबीडियंस, जो उसने कह दिया बस वही सत्य है, जो मार्ग उसने बता दिया बस वही मार्ग सत्य है, उसके अतिरिक्त जो भी मार्ग है सब कुछ असत्य है, सब झूठ है। भगवान इस समय आया है और हमें भी एक मार्ग बताता है, एक राह बताता है, एक पथ, एक यात्रा सिखाता है, और वो रूहानी यात्रा है। तो आज की सारी अव्यक्तवाणी इसी रूहानी यात्रा पर आधारित है, और इस रूहानी यात्रा की मूल्य के आधार से ऐसी 10 बातें हम देखेंगे। हमारी ये यात्रा है, सफर है, जर्नी, ट्रेवल, वोएज। सबसे पहली चीज है यात्री। यात्रा के लिए क्या आवश्यक है, जो पथिक है, जो यात्री है, वो कौन है, वो कौन है। मैं आत्मा, और आत्मा कैसी है, बाप किन बच्चों को आकर देख रहे हैं, यात्री की खूबियां क्या क्या है आज की मुरली से। मैं आत्मा कैसी हूँ, पहली बात हम चर्चा करेंगे यात्रा, दूसरी बात हम चर्चा करेंगे पहली यात्री, फिर दूसरा पथ, तीसरा साथी, चौथा यात्रा क्यों करनी है, पांचवा साधन क्या है यात्रा के, छठवा तैयारी क्या क्या करनी है, सातवा लगेज कौन कौन सा चाहिए, आठवा ये जो यात्रा है इसमें साइट सीन्स कौन कौन से आने वाले हैं, नौवा ये जो यात्रा है इसमें ट्रैवल सेफ्टी के क्या क्या साधन है सुरक्षा के, और दसवा डेस्टिनेशन लक्ष्य क्या है, मंजिल कौन सी है। तो सबसे पहला आज की मुरली के आधार से यात्री के लिए बाबा ने क्या क्या कहा, जो कि मैं हूं, जो कि मैं आत्मा हूं। बाप आकर किन बच्चों को देख रहे हैं, यात्री मैं कैसी हूं, स्नेही आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। किन आत्माओं को बाबा देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं जिनका साथी स्वयं भगवान है, उनको देख रहे हैं जिन्होंने स्वयं भगवान को साथी बनाया, जो कदम कदम पर भगवान के साथ चल रही है, जिनका एक कदम भी इस कदम से अलग नहीं, जिनका हर संकल्प वेरीफाई हो रहा है, ऐसी आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। एक ऐसी आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं जो दूसरे दूसरे रास्तों पर चल चल के भटक भटक के क्या हो गए थे, थक गए थे। वो हम ही आत्माएं हैं जो द्वापर से भटकना चालू किया, अब तक भटक रहे थे, नाखुश, नाराज, उदास, निर्बल, दिल शिकस्त हो गए थे, ऐसी आत्माओं को बाबा देख रहे थे। और कैसी आत्माओं को देख रहे थे आज की मुरली से, मैं आत्मा कैसी हूं, कैसी हूं, किन को भगवान देख रहे थे। हम चर्चा कर रहे हैं रूहानी यात्रा की, जिसमें सबसे पहले जरूरी है कि मैं आत्मा क्या हूं वो मुझे पता रहना चाहिए। टीचर से मुलाकात, निमित्त आत्माओं को बाबा देख रहे थे। टीचर से मुलाकात, न्यारी आत्माओं को बाबा देख रहे थे। टीचर से मुलाकात, जो रूहानी गुलाब है ऐसी आत्माओं को बाबा देख रहे थे। तो मैं कौन हूँ, रूहानी गुलाब, रूहानी खुशबू फैलाने वाली, रूहानी सेवा करने वाली, रूहानी नशे में रहने वाली, रूहानियत फैलाने वाली, क्योंकि संसार में झगड़ा है और रूहानियत फैलाने वाली कितनी कम आत्माएं, कितनी गिनी चुनी आत्माएं जो कि हम हैं। कई मुरलियों में बाबा ने साकार में कभी कहा था, जाओ जाकर गुलाब के फूल और फूलों के सामने जाकर बैठ जाओ और देखो इनमें से मैं कौन हूं। कितना अच्छा अभ्यास है फूल के सामने जाकर बैठना और ये देखना क्या मैं ऐसा हूं। तो टीचर अर्थात निमित्त, टीचर अर्थात जो न्यारी है, टीचर अर्थात मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु नहीं, सब कुछ बाबा का है, जिन्होंने मेरे को तेरा कर दिया है, गहराई में चेतना में मैं बैठा है और हर जगह दिखावा है, हर जगह सूक्ष्म ढोंग और दंभ है। अध्यात्म की यात्रा इन सब से परे जाना है। तो मैं आत्मा कौन हूं, कमाल करने वाली आत्मा हूं। कुमारी अर्थात जो क्या करती है, कमाल करती है। संसार की आत्माएं देहभान में लात खुद रहती और दूसरों को देहभान में गिराती है, और कुमारी अर्थात जो खुद देही अभिमानी है दूसरों को भी उड़ाती है। कितना बड़ा कार्य है, केवल कुमारियां नहीं सबके लिए है। कुमारी अर्थात किन से बाबा बात कर रहे हैं, आत्मा की क्या क्या खूबियां बताई। कुमारी अर्थात शक्ति स्वरूप, कुमारी अर्थात शक्ति सेना, शक्ति का ये झुंड, इसको छोड़कर जाने वाली नहीं, किसी कुसंग में आने वाली नहीं। कुमारी अर्थात स्वप्न में भी हिलने वाली नहीं। कुमारी अर्थात सारे सुख एक बात से अनुभव करने वाली, प्रैक्टिकल अनुभव करने वाली, सारे संबंधों का रस एक बाप से, कुमारी अर्थात निश्चय बुद्धि विजयी, कुमारी अर्थात बहादुर। और बहादुर जब आते हैं तो क्या होता है, बैंड बजते हैं। तो कुमारी अर्थात जब तुम आओ तो बैंड बजे और दूसरों की विकारों की क्या कर दे, बैंड बजा दे। साकार में ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा था, जब कभी शादी होती है तो बैंड बजाए जाते हैं, शहनाई बजती है। मधुबन में तो निरंतर शादी हो रही है, आत्मा और परमात्मा की, यहां 24 घंटे बैंड बजना चाहिए ताकि लोग आके कहे कल तो बैंड बजी थी, कल किसकी शादी थी, आज किसकी शादी है। तो उनको कहो कि हमारे यहां रोज शादी होती है। तो यहां निरंतर अविरल खुशी के बैंड बजने चाहिए, कुमारी अर्थात बहादुर, कुमारी अर्थात हर कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली। सेकंड पार्टी हाँ, पूछे तुमको किसने सिखाया, तुमको सिखाया किसने, यहां आए कोई तो अनुभव हो जाए। गंगे दादी ने अपना अनुभव लिखा है कि जब वो ज्ञान में आई तो माँ बाप बहुत विरोध करते थे, तो बाबा ने कहा एक बार अपने माँ बाप को यहां ले आओ मधुबन में। तो वो ले आई, एक हफ्ता रुके और परिवर्तन हो गया। तो माँ ने बाबा से बाद में जाकर कहा, उनकी माँ ने, कि बाबा मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है, ना तुम्हारा दोष है ना उसका दोष है, ये तुम्हारा पार्ट था, वो तुम्हारा पार्ट था। ऐसी शिक्षाएं यहां मिलती है। तो आत्मा के लिए बाबा ने क्या कहा, यात्री के लिए फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया एक बाप है, फरिश्ता अर्थात देह के सारे हद के संबंधों के आकर्षण से परे, फरिश्ता अर्थात फरिश्तों के संसार में रहने वाला। कितनी अच्छी बात बोल दी, कौन से संसार में रहने वाला, फरिश्तों के संसार में रहने वाला। तो मैं आत्मा यात्री हूं, मैं आत्मा पथिक हूं, राही हूं, इस अध्यात्म जगत का राही। मेरी यात्रा बड़ी सूक्ष्म है, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारा दृश्य का खेल है, खेल ही सारा अदृश्य का है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना ज्ञान दिखाई देता, ना योग दिखाई देता, ना ये माया भी नहीं दिखाई देती, ना राजाई दिखाई देती है, सेवाएं भी गुप्त, सब कुछ गुप्त 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 है। बाहर जो दिख रहा है वो कुछ और, पर अंदर कुछ और चल रहा है। तो ये सब क्या कहा बाबा ने, मैं आत्मा, कितने ऊंचे ऊंचे समान, एक एक समान, हल्का फरिश्ता, कुमारी अलौकिक, टीचर्स निमित्त, रूहानी गुलाब। एक एक शब्द पर यदि चिंतन करें तो एक एक घंटा चिंतन हो सकता है। अगर एक ही मुरली संपूर्ण बनने के लिए कितनी मुरलियां काफी है, कितनी मुरलियां चाहिए हफ्ते में, एक ही मुरली काफी है, उसमें इतनी गहराई है, इतनी सारी बातें हैं। तो सबसे पहली बात यात्री के बारे में, दूसरी बात साथी, साथी कैसा है, भगवान साथी है, कैसा है ये साथी, अविनाशी है ये साथी, कैसा है, कैसा है, सदा साथ है ये साथी, कैसा है, कैसा है, थकान मिटाने वाला है, हलकान मिटाने वाला ये साथी है, ये साथी कैसा है, ये साथी कैसा है, ये साथी कैसा है, निरंतर साथ रहता है, कभी भी धोखा नहीं देता। बाबा ने कहा 63 जन्म क्या किया तुमने, गिरे फंसे या मंजिल तक पहुंचे, खुद सोचो अगर अभी भी पेट नहीं भरा तो दो तीन जन्म चाहिए तो दे दूं तुमको, धोखा और खा लो। इतना धोखा खाने से पेट अगर नहीं भरा है तो और थोड़े धोखे खा लो। तो ये साथी सदा साथ है, कभी धोखा नहीं देता, कभी नाराज नहीं होता, कभी उदास नहीं होता। बच्चे बाप को गुड मॉर्निंग गुड नाइट करे या न करे, बाप जरूर करते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। चाहे तुम भूल जाओ रात में, थक गए और जाकर सो गए, ये भी अलबेलापन है, इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त महावाक्य। ये साथी कैसा है इस मार्ग में आगे बढ़ाता है, ये साथी कैसा है सुबह की साकार मुरली कदम कदम पर बल भरता है, ये साथी कैसा है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है, ये साथी कैसा है आज की ही अव्यक्तवाणी। ये साथी क्या करता है तुम्हें आगे बढ़ाता है, ये साथी क्या करता है कदम कदम पर बल भरता है, ये साथी क्या करता है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। वो साथी बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, उन साथियों का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, मूड पर है। ये साथी एक रस है, ये साथी निरंतर है, निरंतर अनुभव कराता है। हजार भुजाओं सहित साथ है, मदद करने के लिए तत्पर है, आतुर है कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हजार भुजाओं वाले बाप को छोड़कर क्या दो भुजाओं वाले के पास जाते हो, क्यों जाते हो उत्तर बताओ। बाबा ने कभी प्रश्न पूछा था, हजार भुजाओं वाले को छोड़कर दो भुजाओं वाले के पास जाते हो क्यों, कारण बताओ। ऐसा बाबा ने पूछा था। तो ये साथी बड़ा सलोना साथी है, ये साथी हसीन मुसाफिर है, पर माया भी कम हसीना नहीं है। ये साथी हसीन मुसाफिर है, सदा का साथी है, बुलाओ तो आ जाता है, तुरंत आता है, परंतु आवाज कहां से निकलनी चाहिए। ये दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं। ऊपर ऊपर से बुलाओगे तो नहीं आएगा। आर्त पुकार, सच्चे दिल की पुकार। तो दूसरी बात साथी, तीसरा ये यात्रा, ये पथ, ये मार्ग। कैसा मार्ग है ये? सहज मार्ग। क्यों सहज है? क्योंकि यहां कॉपी करना है। बाबा ने कहा वहां कॉपी करना नॉट अलाउड, यहां कॉपी ही करना है। ये मार्ग कैसा है? श्रेष्ठ मार्ग है। ये मार्ग कैसा है? स्पष्ट मार्ग है। यहां सब कुछ दिखाई देता है, इंटरनेशनल हाईवे है। बाकी जो गलियां है छोटी 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 छोटी, वो कहां ले जाती है? कहां ले जाती है? उलझन के जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ कंफ्यूजन। ये मार्ग को छोड़ा कि कंफ्यूजन में, और वो जो फॉरेस्ट है, वो जो जंगल है, उसमें काटे ही काटे इर्द गिर्द, और वहां एक बार चले गए कि निकलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इस मार्ग पर चलो, मनमत परमत नहीं श्रीमत। तो तीसरी बात है ये मार्ग, ये पथ, ये राह जो भगवान ने हमको दिखाई है। इसमें डर नहीं है, इसमें भटकना नहीं है। भटकना तो उधर है, बहुत भटक लिए, अब भटकना बंद करना है। बहुत अनुभव ले लिए, बाबा ने कहा है जो अनुभव से भी नहीं सीखे उनको क्या कहा? भाग्यहीन। एक बार ठोकर खा ली, फिर से ठोकर। तीव्र पुरुषार्थ की कभी परिभाषा बाबा ने दी थी, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक बार की हुई गलती फिर न करना, यह तीव्र पुरुषार्थ है। किसी दूसरी मुरली में तीव्र पुरुषार्थ की और एक परिभाषा थी, जो स्थिति एक सेकंड पहले थी एक सेकंड के बाद स्थिति आगे हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात तीसरी परिभाषा, जो सोचा वो तुरंत किया, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो बार बार गलतियां करना, बार बार अपने आप को होश में लाना है। बहुत देहधारियों से प्यार कर लिया, बहुत विश्वास कर लिया, क्या मिला? धोखा, दुख। अब मैं आया हूं, अब मुझसे प्यार करो। तो तीसरी बात, ये मार्ग सहज है, स्पष्ट है और श्रेष्ठ मार्ग है, आसान मार्ग है ये, इसी मार्ग पर चलते जाना है। ये थी तीसरी बात। चौथी बात, क्यों जाना है इस मार्ग पर, ये ट्रैवल क्यों करना है, ये यात्रा ही क्यों करनी है? क्योंकि वो यात्राएं बहुत करके देख ली, रास्तों की, चार प्रकार के रास्ते बताए बाबा ने जो भटकाते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं वो भटकाने वाले? सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों का रास्ता। मन में व्यर्थ संकल्प चालू हो गए कि रुकते ही नहीं बिल्कुल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। दूसरा, कमजोरी, कमजोर संकल्प के रास्ते, मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार करके देख लिया, हर बार असफल हुआ, इसलिए अब हिम्मत टूट गई है, इच्छा नहीं होती कुछ करने की। तीसरा, आकर्षण, संसार के आकर्षण। एक व्यक्ति अपनी एक नई नई गाय खरीद कर लाता है और उसे अपने घर के अंदर घुसाना है उसको, तो उसको कितना कहता है नहीं मानती, फिर उसको पकड़ के लेके जाता है तो नहीं मानती, उसके सिंग पकड़ता है और अंदर की घसीटता है फिर भी नहीं मानती। एक संत उसको देख रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, घास लेके आओ। क्या करो? घास लेकर आओ और उसके मुंह के सामने रखो, उसको पर एक डिस्टेंस रखना, खिलाना नहीं है, डिस्टेंस रखना, और डिस्टेंस उतना ही कायम रहे और आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे घास, पीछे पीछे गाय, और गाय कमरे के अंदर, अंतर कम नहीं होने देना, अंतर उतना ही रहेगा। संसार के सारे आकर्षण, सारे प्रलोभन ऐसे ही है, अंतर उतना ही रहता है और व्यक्ति को लगता है ये मुझे मिल जाएगा और उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है और फिर कहां पहुंच जाता है? जंगल में। कौन सा जंगल है? बड़ा घना जंगल है ये, कांटों का नहीं, उलझन का जंगल, जिसमें चार प्रकार के कांटे हैं। क्या, क्यों, कैसे और पुराने संस्कार। ये ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा ही क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए, यहां पर भी ऐसा, ये लोग भी ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या, क्यों, कैसा, पुराने संस्कार, पुराना जीवन बड़ा संघर्ष में ही रहा, योद्धा थे, अब बीच बीच में प्रकट हो जाते योद्धा के संस्कार। जैसे एक व्यक्ति था, बहुत झगड़ालू था, इतना झगड़ालू, सबसे झगड़ता था गांव में। फिर एक दिन कुछ ऐसी घटना हो गई दुखद कि वैराग आ गया और सन्यासी ले लिया और सीधा सन्यासी बन गया। शास्त्रों का अध्ययन किया कितने साल और अब वापस गांव लौटा और अब वापस लड़ता है सबसे शास्त्रों के ऊपर, क्योंकि वो सारे संस्कार तो थे, प्रकट हो गए, दिशा बदल गई, बस अब सिद्ध करता है कि मैं जो कहता हूं वही राइट है, मैं जो मानता हूं वही राइट हो, है कोई मुझसे शास्त्रार्थ करने वाला? पहले तलवार से लड़ता था, अभी वाचा से लड़ता है, वाणी से लड़ता है, परंतु लड़ना जारी है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, स्थान भी बदल गया, पहले घर अभी आश्रम में, पर लड़ना इधर भी जारी है, पहले घर था अभी सेंटर या मधुबन है, लड़ना इधर भी जारी है कि संस्कार वहां का लेके आए, परिवर्तन ज्ञान योग का हुआ है, ऊपर ऊपर का, नीचे तो नदी वही बह रही है, उधर भी और इधर भी। तो तीसरी बात, चौथी बात कारण, क्यों आए हम यहां, इस मार्ग पर क्यों चलना है, इस पथ पर क्यों चलना है, क्योंकि उधर हमको थका दिया उस मार्ग ने। क्या हो गए थे बाबा ने कहा, दिल शिकस्त हो गए थे, क्या हो गए थे, निर्बल बन गए थे। अभी इस मार्ग पर चलना है, इस पथ पर चलना है, और ये पथ कौन सा है, ये बात तो बोली नहीं, ये पथ कौन सा है, ब्रह्मा के कदम पर कदम का पथ, जो उसके संकल्प वो मेरे संकल्प। हर संकल्प को क्या करो, सत्यापन करो, वेरीफाई करो हर संकल्प का, कि मैंने ये सोचा, अगर ब्रह्मा बाबा इसी जगह मेरे स्थान पर होते तो क्या वो यही सोचते, ऐसा ही करते। जितना विरोध का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ा, शायद ही और किसी को करना पड़ा, और विरोध करने वाले यहीं से थे, ये भी है, यही थे वो सब। सब कुछ होगा, सारी परीक्षाओं के लिए तैयार रखना है। जो ब्रह्मा को परीक्षा आई वो हर एक को आएगी। जीसस क्राइस्ट ने कभी अपने शिष्यों से कहा, दे हैव थ्रोन स्टोन्स अपॉन मी, दे विल थ्रो स्टोन्स अपॉन यू, दे हैव प्रोसिक्यूटेड मी, दे विल प्रोसिक्यूट यू, दे हैव क्रूसिफाइड मी, दे विल क्रूसिफाई यू वन डे, बट देन दे विल ग्लोरीफाई मी एंड दे विल ग्लोरीफाई यू ऑल्सो। उन सब ने मुझे बहुत सताया, तुमको भी सताएंगे, अपने सभी शिष्यों को कहता है, और उसके जितने शिष्य होते एक एक करके सभी कई सालों बाद अलग अलग जगह पर सूली पर चढ़ाए जाते। जो जो यातना है उसे सहन करनी पड़ी, वो सब उसको सहन करनी पड़ती है। वो कहता है, जो जैसे पत्थर मुझ पर फेंके गए तुम पर भी फेंके जाएंगे, परंतु मुझे सूली पर चढ़ाए तुमको भी चढ़ाएंगे, परंतु जैसे मेरा एक दिन गायन होगा तुम्हारा भी गायन होगा, तुम्हारी भी महिमा होगी जब मेरी महिमा होगी, तुम भी मेरे साथ एक एक तुम स्वर्ग में मेरे बाजू में बैठोगे। Each one of you will sit beside me in heaven. तो सारी परीक्षाएं आएंगी, सारी आजमाइशें आएंगी, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन, और हर परीक्षा परिपक्व बनाएगी, हर परीक्षा और शक्तिशाली बनाएगी, पावरफुल बनाएगी। इसके लिए आ रही है तो आने दो, बहुत अच्छा है। जब तुम पेपर पास करते हो तो बाबा ने किसी मुरली में कहा, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन सा, विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट जिसके पास रहता है वो थोड़ा सा कॉलर उसकी टाइट हो जाती है, क्योंकि नाम के सामने डिग्री। किसी एक देश में, आज ही के अखबार में है शायद, ऐसी अनाउंसमेंट की गई है कि जो अच्छे ड्राइवर होंगे गाड़ी के उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और फिर लास्ट एक महीने के बाद उनके टैक्सी पर लिखा जाएगा सेफ ड्राइवर है ये। तो कितना फायदा हो जाएगा बाद में उनका, सब लोग उन्हीं के पास जाएंगे जिसकी गाड़ी पर वो लिखा है, क्योंकि सील गवर्नमेंट से लग गई। तो क्यों जाना है, क्योंकि वहां जाकर देख लिया कहां पहुंच गए, जंगल में, बिहड़ जंगल में, कटाटो पंधकार, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो, भूल भुलैया है वो, क्योंकि मन में इतने प्रश्न है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यही जंगल है। बाकी तो आराम से ज्ञान योग करते हैं, इनको तो कोई माया दिखती ही नहीं इनके जीवन में, हर एक को दूसरा का जीवन बड़ा ही अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक चल रहा है इनका, हमारा ही गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं किस जन्म के पाप कर्मा स्पेयर्स नन, इंग्लिश में कहावत है, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ेगा, कर्म फिलॉसफी। चौथी बात थी क्यू। पांचवी बात, वो जो यात्रा है कैसे करते हैं, पैरों से करते हैं, गाड़ी से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, फ्लाइट से करते हैं, जहाज से करते हैं, ये यात्रा कैसी है, कैसे करते हैं, ये साधन क्या है, वाहन कौन सा है इस यात्रा का, मन बुद्धि, ये बुद्धि की यात्रा है, ये आंतरिक यात्रा है, इसमें स्वयं को चेक करना है, ब्रह्मा के ये कदम है, मैं इन कदमों पर चल रहा हूं, और ब्रह्मा के कदम कौन से हैं, ब्रह्मा के कदम संकल्प, ब्रह्मा के संकल्प ही कदम है, बोल कदम है, कर्म कदम है, चलन कदम है, संबंध संपर्क ब्रह्मा के कदम है, क्या जैसे उसके संबंध संपर्क थे मेरे भी संबंध संपर्क वैसे ही है, प्योर, या मेरा संबंध भगवान के सामने जाए और भगवान कहे रिजेक्टेड, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, लौकिकता है, फैमिलियरिटी है, लगाव है, इस संबंध में झगड़ा है, कुछ दिन पहले था तुम्हारा आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए, ब्रह्मा का कदम शरीर और उसका तन धन, उसने शरीर का जैसा प्रयोग किया मैं भी कर रहा हूं, यह शरीर भोग विलास में डूबा हुआ है, यह देह तपस्या के लिए मिली है ना कि विलासिता के लिए, धन धन का मैं क्या कर रहा हूं, जमा करके रख रहा हूं, पकड़ के रख रहा हूं, या सेवाओं में लगा रहा हूं, उसके बाद में बुद्धि और संस्कार कदम है, बुद्धि उसने अपनी बुद्धि को दिव्य बनाया, मैं क्या कर रहा हूं, संस्कार का मैं क्या कर रहा हूं, सभी बंधनों से मुक्त आज का वरदान है, दबाव प्रभाव बंधन संबंध सबसे मुक्त, ब्रह्मा के कदम अर्थात उसकी दृष्टि वृत्ति दृष्टिकोण संस्कार, ब्रह्मा के कदम अर्थात उसकी भावनाएं कल्पनाएं स्मृतियां स्वप्न, ब्रह्मा के कदम अर्थात उसका खाना उसका सुनना लिखना स्पर्श करना, 21 बातें हैं, 21 पॉइंट्स, ब्रह्मा के कदम, ये कदम है, जो उसने किया वैसे करना। बाबा ने कहा तुमको सोचने की आवश्यकता नहीं, बस कॉपी करते जाओ, फॉलो करते जाओ, अनुकरण अनुगमन अनुसरण तीनों ही चीजें करो, फॉलो के तीन अर्थ है, अनुसरण अर्थात उसकी चलन जैसी है वैसे, अनुगमन चलना जिस मार्ग पर वो गया नक्शे कदम पर चलना, और अनुकरण कॉपी करना सीधा, इमिटेट डिक्टो वैसे के वैसे करना, पहला चलन से संबंधित है, दूसरा कदम से संबंधित है, और तीसरा कॉपी से संबंधित, अनुकरण अनुगमन अनुसरण अर्थात फॉलो करना। तो पांचवी बात कौन सी बताई, यात्रा के साधन क्या है, मन बुद्धि, इसी को शुद्ध करना है। कभी कभी हमने ये देखा है चिंतन भी बाधा बन जाती है, ये बड़ा विवादित वाक्य है परंतु ये सत्य है, ज्ञान का बहुत अधिक चिंतन करते करते कभी चिंतन ही बाधा बन जाती है, इसलिए केवल सोचना मैं आत्मा हूं और आत्मा के बारे में सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है चिंतन से भी, चिंतन बहुत जरूरी है शक्तिशाली बनाता है विचार सागर मंथन, पर कभी कभी वो भी बंधन बन सकता है, इसलिए एक सूक्ष्म बात उसमें है कि केवल आत्मा का अनुभव आत्मा के विषय में सोचना अनुभव चिंतन से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए चिंतन करना अच्छी बात है पर उसमें भी फंस नहीं जाना है, नहीं तो वो भी बंधन बन जाएगा चिंतन। तो ये पांच, उसके बाद में छठवी बात लगेज, कौन सा लगेज, लगेज पैक करना होगा ना, यात्रा को जाना है तो, ये रूहानी सफर है, इस अपने बैग में कौन कौन सी चीजें भरनी है? शुद्ध संकल्प। बैग में क्या क्या भरना है? 8 शक्तियां। बैग में क्या क्या भरने हैं? 9 खजाने। बैग में क्या क्या भरना है? 16 कलाएं। बैग में क्या क्या भरना है? 36 गुण। सब कुछ उसमें भरना है। एक भी गुण कम नहीं होना चाहिए लास्ट संडे की मुरली, तो क्या हो जाएगा? धोखा। एक भी गुण कम हो गया था। उदाहरण कौन सा दिया था? माचिस। सब कुछ लाया, माचिस ही नहीं लाई। और हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, माया बराबर वहीं आक्रमण करती है। अकिलिस हिल लास्ट टाइम बताया था, छोटा सा वो बच्चा, यूनान का सबसे महान योद्धा जिसको कहा गया अकिलिस, जिसको कोई नहीं हरा पाया, पर उसकी एक ही कमजोरी थी। उसकी मां जब वो छोटा था तो उसकी मां ने उसे एक तालाब में डुबोया था, जहां पे वो वज्र जैसा बन गया, परंतु उसकी एड़ी पकड़ के रखी थी, वो उतना रह गया बस। उसने सबको जीत लिया, परंतु ट्रोजन का वो युद्ध, अंतिम युद्ध, उसके शत्रु को पता चल गया, बराबर एड़ी पर तीर मारा और वो हारा गया। ज्ञान बहुत अच्छा है, योग बहुत अच्छा है, सेवा भी बहुत अच्छी करती है, परंतु धारणा में एक धारणा ऐसी है, फैमिलियरिटी का संस्कार है। जो भी मिलता है उससे मैत्री कर लेते हैं और फिर कॉन्टैक्ट बढ़ा लेते हैं और फिर दोस्ती बन जाता है। ऐसी दोस्ती बस यही एक गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। पर माया क्या करेगी? माया वहीं आक्रमण करेगी। जैसे वो दिखाया है, एक व्यक्ति, उसे मूर्तिकार होता है, उसे पता चल जाता है मेरी मृत्यु नजदीक है और वो आ रही है, तो वो एक चाल करता है, चाल खेलता है मृत्यु के साथ। वो इतना सुंदर मूर्तिकार होता है, अपने ही जैसी 11 मूर्तियां बना के रखता है, ताकि मृत्यु का जो जो आएगा यमदूत, वो कंफ्यूज हो जाएगा किसको ले जाऊं। 11 मूर्तियां बना के रखता है और 12वीं जगह खुद खड़ा हो जाता है, तो वो मृत्यु का फरिश्ता, विदेश में तो फरिश्ता ही कहते हैं उसे, वो आता है और वो देखता है, अरे किसको ले जाऊं, ऊपर से आदेश तो आया है पर ले किसको जाऊं, क्योंकि सभी समान दिख रहे हैं। वापस जाता है भगवान के पास और कहता है, समझ में नहीं आ रहा है, भगवान उसके कान में मंत्र फूंकते हैं, कहते हैं जाओ अब गाओ, और वो जाता है और वो कहता है, वाह कितनी सुंदर मूर्ति है, किसने बनाई ये मूर्ति है, बहुत ही बढ़िया है, परंतु एक कमी रह गई है इसमें। वो व्यक्ति कहता है, कमी और मेरी बनाई हुई मूर्ति में कौन सी कमी? वो कहता है, बस यही कमी रह गई है, चलो साथ में। कौन सी कमी? यही कि कहां है कमी मेरी, मेरे में भी कमी है। कोई अगर आके कह दे, आज तुमको सोते हुए देखा था सुबह सुबह अमृत वेला, सबसे बड़ा शत्रु ज्ञान योग में हमारी कमी निकालता है, पहले अपना तो देखो, और हमको बताता है, खुद तो आते नहीं कभी। तो कहां थे हम? लगेज पर। यात्रा। लगेज में बहुत सारी चीजें भरनी है, सारे गुण भरने हैं, सारी शक्तियां भरनी है, सारे खजाने भरने हैं, सारी कलाएं भरनी है उसमें, हर प्रकार की कला, हर प्रकार की कला। बाबा ने कहा तुम ऑलराउंडर हो, तुमको सब आना चाहिए, ये नहीं कहना ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये तो मुझे नहीं आता है। हर प्रकार की कला, हर प्रकार की सेवा, हर फन मौला, हर फन मौला अर्थात जिसे हर प्रकार का फन आता है वो बनना है। उसके बाद है प्रिपरेशन, तैयारी। जब भी कहीं यात्रा में जाते तो क्या क्या करते हैं? मधुबन में आते समय क्या क्या किया? सबसे पहले तो मनसा तैयारी कि मधुबन जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, क्या क्या करना है, फिर थोड़ी अगर कोई जॉब करता है तो वहां से छुट्टियां लेनी है, दुकान वगैरह उसको बंद करना है, बहुत सारी मानसिक तैयारी, शारीरिक तैयारी, बीमारी है तो दवाई विवाई सब लेके जाना है, नहीं तो बस माताएं आती है सेवा करने और यहां आके बीमार और फिर हॉस्पिटल और फिर और लगता है और ज्यादा बोझ हो गया। तो शरीर का स्वास्थ्य उस यात्रा में। और तीसरा है आध्यात्मिक तैयारी, ये जो यात्रा है, जिस यात्रा पर हम निकल पड़े हैं, ब्रह्मा के कदम पर कदम, संकल्प बोल कर्म चलन संबंध, तन धन बुद्धि संस्कार, दृष्टि वृत्ति कृति दृष्टि वृत्ति दृष्टिकोण आदते भावना स्वप्न कल्पना स्मृतियां, देखना खाना सुनना स्पर्श करना, सब कुछ ये कदम है उसके। इस यात्रा के लिए भी क्या चाहिए? आध्यात्मिक तैयारी। पहले तो संकल्प की मुझे इस यात्रा पर निकलना है। ये यात्रा है मनुष्य से फरिश्ता बनने की, ह्यूमन टू एंजल, मास्टर ब्रह्मा बनने की। इस यात्रा पर मुझे निकलना है। पहले मानसिक संकल्प और मन को ठीक, मन तैयार शरीर तैयार और आध्यात्मिक तैयारी। आध्यात्मिक तैयारी अर्थात ये बाबा ने कहा है, ये श्रीमत है, अगर इसमें से कुछ भी तोड़ा तो फिर दुख होगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। यहां किए हुए ब्राह्मण जीवन में किए हुए सूक्ष्म सूक्ष्म विकर्म एक दिन क्या होगा? एक दिन मुकदमा बड़ी अदालत में पहुंचेगा। क्या होगा? एक दिन मुकदमा बड़ी अदालत में पहुंचेगा, वहां इंसाफ होगा। यहां बच सकते हैं, वहां नहीं बच सकते, वो धर्मराज की अदालत होगी। तैयारी, स्वयं को तैयार करना है इस यात्रा के लिए। उसके बाद में अगला साइट सीन्स, दो प्रकार के साइट सीन्स की चर्चा आज की मुरली में आई है। कौन से, कौन बताएगा? साधन और संबंध। क्या कहा बाबा ने? साधन और संबंध, ये दो चीजें हैं जो आकर्षित करती है, हद के खींचती है। पर क्या पाया? गिराया, फंसाया या मंजिल तक पहुंचाया? गिराया। चाहे कितना भी कोई अट्रैक्टिव संबंध है, कितना भी हमको लग रहा है ये बड़ा ही निस्वार्थ है, कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। इस संसार का कोई भी संबंध बाप के संबंध को रिप्लेस नहीं कर सकता। स्थान नहीं ले सकता। ये दो चीजें बड़ी माया है, संबंध और दूसरा साधन, दोनों भी खींचते हैं। और हर एक व्यक्ति अपने संबंधों को ऐसे दिखाना चाहता है कि ये बहुत अच्छा है, ये सेवा का है, उसमें लेबल चिपकाता है, अलौकिक है, प्रेममयी है, सेवा का है, रूहानी है। यहां तो सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है, क्या वास्तव में रूहानी है, वैसा है जैसा बाप चाहते हैं। अलौकिक संबंध, साधन, ये दो साइड सीन्स है। इस यात्रा में ये दो खींचेंगे और रास्ते चार बताए, जो कहां पहुंचाते हैं, जंगल में और जहां चार काटे हैं। धोखा खा लिया, फिर धोखा खाया अर्थात भाग्यहीन। बाप ने तुम्हें भाग्य का वर्षा दिया है, भाग्य का भंडार दिया है और भाग्य की जायदाद। कितना अच्छा शब्द है, क्या दिया है? भाग्य की जायदाद, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, फिर भी भाग्यहीन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवल सेफ्टी। उस ट्रैवल में ट्रैवल सेफ्टी होती है, बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं और क्या क्या करते हैं सेफ्टी के लिए, लाइसेंस, सारे कागजात। उस दिन मुरली में था, श्रेष्ठ स्थिति ही क्या है, वरदान में मेडल है, श्रेष्ठ स्थिति मेडल है, इससे बड़ा और कोई मेडल नहीं है। कौन कब से है, कौन कहां है, इसका कोई महत्व नहीं है। इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है, इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी पवित्रता आगे है, कौन कहां रहता है, कब से रहता है, ये कौन है। और सेफ्टी क्या होती है ट्रैवल में, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है। ट्रैफिक रूल्स अर्थात मर्यादा है, जो रोज रोज मर्यादाओं को तोड़ते हैं, माया एक दिन उनको तोड़ देगी और लास्ट बात है मंजिल। कौन सी मंजिल है हमारी, संपूर्ण बनने की। कौन सी मंजिल है हमारी, समान बनने की। कौन सी मंजिल है हमारी, संपन्नता की, समानता की, समीपता की, संपूर्ण समान समीप भाव समान। तो ऐसी ये 10 बातें थी। पहली बात बताई यात्री कौन, दूसरी बात साथी कौन, तीसरी बात पथ कैसा है, चौथी बात क्यों करनी है यात्रा। जैसे कोलंबस निकल पड़ा था यात्रा करने, वहां से स्पेन से यूनाइटेड स्टेट 10 हफ्ते लगे थे, अभी तो रातों रात पहुंच जाते हैं। क्यों करनी है यात्रा, उसके बाद साधन वाहन क्या है यात्रा का, उसके बाद लगेज क्या है, तैयारी क्या है, उसके बाद साइट सीन्स, उसके बाद सेफ्टी के क्या क्या साधन हमने साथ में लिए हैं, सारी तैयारी है, और लास्ट संपन्न मंजिल। ऐसे रूहानी गुलाब आत्माओं को, ऐसे अलौकिक कुमारियों को, ऐसे बहादुर कुमारियों को, ऐसी निमित्त टीचर्स बहनों को, ऐसे न्यारी प्यारी आत्माओं को, ऐसे ऐसे शांत रहने वाली आत्माओं को, बाबा ने कहा तुम शांत रहते हो ये तुम्हारा युद्ध है माया के साथ, ऐसी एक बाप को साथी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसी मनमत परमत मिक्स न करने वाली आत्माओं को, ऐसी हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसी हर कदम ब्रह्मा के कदम पर कदम रखने वाली आत्माओं को, ऐसी स्नेही आत्माओं को, ऐसी कंफ्यूजन के जंगल में न जाने वाली आत्माओं को, ऐसी भाग्य विधाता भाग्य की जायदाद बनाने वाली आत्माओं को, ऐसी निमित्त बन सफलता की चाबी लेने वाली आत्माओं को, ऐसे दबाव प्रभाव में न आने वाली आत्माओं को, ऐसी कांटों से सेफ रहने वाली आत्माओं को, ऐसी हाँ सभी हाँ बाबा ने कहा कुमारी अर्थात वहां जो सेना होती है वहां लेफ्ट राइट है, यहाँ राइट ही राइट है, यहाँ राइट ही राइट करने वाली आत्माओं को, ऐसी ऐसी हाँ अपने चरित्र से बाप के चित्र को प्रत्यक्ष करने, अपने हर कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, ऐसी फरिश्ता आत्माओं को, डबल लाइट आत्माओं को, ऐसी एक बाप ही संसार है ऐसी आत्माओं को, ऐसी उड़ने उड़ाने वाली आत्माओं को, ऐसी खुशी का बैंड बजे, तुम जब चलो तो खुशी का बैंड बजे ऐसी आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को, ऐसे स्वप्न में भी हिलने न वाली आत्माओं को, ऐसे कुसंग में न जाने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ मार्ग पर सहज मार्ग पर चलने वाली आत्माओं को, डैश 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 ऐसी बहुत सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।